मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे जो निजता की सुरक्षा की बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं, इस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले जो दो तीन थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटनाओं जैसी हैं या तथ्य हैं, मुझे लगता है कि उन्हें सांकेतिक रूप में आपको बता दिया जाना चाहिए। कल की अगर आपने रेडियो न्यूज सुनी हो और ध्यान से सुनी हो तो एक तथ्य आपको सुनने को मिला होगा और बहुत विस्तार के साथ मिला होगा। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आप इसी तरह से टॉपिक निकालते हैं। वह शब्द है भू स्थानिक जियो स्पेशल। भू स्थानिक जियो स्पेशल यानी भारत अब इसमें इसके तहत बहुत काम करेगा, इसमें आंकड़े जुटाना है, इसे तैयार करना है और ये हमारे देश का जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा और इसके कारण हमारे यहाँ जो अनुसंधान और नवाचार और जो स्टार्टअप हैं बहुत आगे बढ़ेंगे, रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, हमारी जो आर्थिक वृद्धि की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगी, इससे हम मानचित्र बना सकेंगे, जो भू है हमारी उसके स्थानिक के आंकड़े जुटाने के बाद फिर हमें हमारे यहाँ जो नदियों को जोड़ने का जो अभियान चल रहा है उसमें बहुत मदद मिलेगी, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी और गवर्नमेंट ने फिर ये भी कहा कि इस क्षेत्र में अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी लाएंगे और ये जो भू स्थानिक जो हमारे पास आंकड़े हैं जिनका इस्तेमाल केवल प्रतिबंधित क्षेत्रों में होता है अब इसको हम स्वतंत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी लेकर आएंगे। यहां मैंने जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया है दोस्तों अपनी तरफ से नहीं, न कहीं दूसरे स्थानों से लिया है, ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये सब के सब बातें न्यूज में है। अगर आपको यकीन न हो तो आप कल के न्यूज को सुन करके देखिए, ये सब बातें उसमें कही गई हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि भू स्थानिक जियो स्पेशल आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था के लिए या भारत के लिए किस प्रकार सहायक होंगे, मददगार हो सकते हैं, इसके भारत को क्या लाभ हो सकते हैं। इस पर एक टिप्पणी लिखिए 150 शब्द। अभी मैंने आपसे मुश्किल से 2-3 मिनट इसके बारे में बात की होगी, शायद इतना वक्त भी नहीं लगा होगा। आपने सुना, मैंने आपको एक प्रश्न दिया, क्या अब आपको कोई शक लग रहा है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप इसका उत्तर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने फोकस करके बताया कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पूरे के पूरे सुने हुए न्यूज से कुछ पॉइंट्स आपको निकाल करके दिए कि ये पॉइंट्स हैं और बस इसके आधार पर आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। और मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और इसके आधार पर खासकर मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं वह यह कि जब भी आप न्यूज सुने, अखबार पढ़ें तो थोड़ी सतर्कता के साथ पढ़ें, ये सोच करके पढ़ें और सुने कि नहीं इसमें से मुझे अपने काम की चीज निकालनी है, ये सुनकर सोचकर नहीं कि यार चलो ठीक है सुनना है तो सुन लिया, पढ़ना है तो पढ़ लिया, नॉट एट ऑल, उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसी न्यूज में आपने एक शब्द और सुना होगा जो बजट के संदर्भ में कहा गया, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, ओशन का मतलब यहां महासागर से है, डीप ओशन मिशन, ये अलग से मिनिस्टर ने मेंशन किया है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी हमारे पास थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आज मैं उसकी जानकारी को नहीं ले रहा हूं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपने एक छोटी सी खबर और पढ़ी होगी अखबारों में कि बजट में कहा गया है कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनमें से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, तो ये पता लगा है, अभी ये पक्की खबर नहीं है, कि 4 बैंक सरकार ने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इसमें एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा इंडियन ओवरसीज बैंक और चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाँ जब सरकार घोषणा कर देगी तब आपके लिए ये पक्की न्यूज बन पाएगी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह जो मुख्य विषय है वह है निजता और जीवन या निजता का जीवन। अखबारों में इस पर काफी कुछ बातें की जा रही हैं, काफी कुछ बातें की जा रही हैं, और कल सुप्रीम कोर्ट ने खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक से जो 2 टुक बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं ये फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है। फिर से एक बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब निजता कानून बनाया जाना था तो उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, श्री कृष्णा समिति, उस समय ये इससे जुड़ा हुआ सीधे सीधे प्रश्न आपके मेंस में पूछा गया है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये मामला कितना बढ़ता चला जा रहा है। दोनों मामले, पहले तो ये जो सोशल मीडिया है ये किस तरह से निजता का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरा है कि किस तरीके से ये राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे, फेक न्यूज के माध्यम से समाज में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को लेकर के अभी ये दो पक्ष सबसे ज्यादा प्रबल हैं आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और खासकर कल जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसके कारण मुझे लगता है कि यह और अंडरलाइन हो गया आईएमपी की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है व्हाट्सएप और फेसबुक से, सीधे सीधे कहा कि आपकी कंपनी करोड़ों डॉलर की होगी लेकिन लोगों की प्राइवेसी का मूल्य उससे कहीं ज्यादा कीमती है। आप देखिए, लोगों की प्राइवेसी का मूल्य उससे कहीं ज्यादा कीमती है, तो बहुत ही तीक्ष्ण टिप्पणी है। तो दोस्तों, जब हम निजता की बात करते हैं, निजता की रक्षा की बात करते हैं, और फिर निजता की रक्षा को हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो देखिए इसके स्पष्ट रूप से दो पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष तो संविधान कानून के हिसाब से जो हम निजता की बात करते हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो सामाजिकता वाला पक्ष भी है। सामाजिकता वाला पक्ष का मतलब है कि हमारा जो समाज है, जो हमारे फोर्थ पेपर के लिए एक तरह से कह लीजिए कि एक टॉपिक हो सकता है, एक प्रश्न हो सकता है, जो आपका एथिक्स का पेपर है, उसमें कहने का जो मेरा अर्थ है, जो संकेत है, वो कुल मिलाकर के ये कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक वो जन्म से ही सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते सीधी सी बात है कि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो सामुदायिक जीवन जीता है, कम्युनिटी लाइफ जीता है। क्या हम इस कम्युनिटी लाइफ पर निजता का जो अधिकार है उसे लाद सकते हैं, और अगर लाद सकते हैं तो किस सीमा तक लाद सकते हैं? जैसे कि आप पश्चिमी देशों में चले जाइए, पश्चिमी देशों का मेरे पास कुछ अनुभव है, यूरोप का भी और कनाडा का भी और अमेरिका का भी, वहां मैंने देखा है कि लोग निजता के अधिकार को केवल यानी कि संवैधानिक दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 6-6 महीने के, और उनके लिए अलग से कमरा होता है, वो वहीं सोते हैं। सोचिए वहां से शुरू हो जाती है, पति पत्नी सबका जीवन बिल्कुल सेपरेट है, बच्चे मां के जीवन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। चलिए वो तो हिंदुस्तान में भी है, लेकिन यहां तक कि माता पिता भी बच्चे के जीवन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सबकी अपनी प्राइवेसी है, सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, बावजूद इसके कि वहां भी परिवार है। तो वहां निजता की रक्षा कितनी जबरदस्त मांग की जाती है। क्या भारत में भी इसे ज्यों का त्यों लागू किया जा सकता है? आपको थोड़ा सा इस रूप में भी सोचना पड़ेगा कि जब हम निजता की रक्षा को एक संवैधानिक मामला बना देते हैं या एक कानूनी अधिकार बना देते हैं, तो इस कानूनी अधिकार का किस तरह का प्रभाव हमारे सामुदायिक जीवन पर पड़ेगा। देखिए इस विषय पर मैं एक नए तरीके से बात कर रहा हूं। अखबारों में दिया हुआ है कि क्या क्या कानून बने हैं, क्या क्या होने चाहिए, इन सबको आप पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा अर्थ थोड़ा सा यहां दूसरा है। मैं आपकी जो सोच है, जो विचार करने का दायरा है, उसे थोड़ा सा व्यापक बनाने जा रहा हूं। तो अब आप देखिए कि जब हम कोई भी काम कानून के तहत करने लगते हैं तो धीरे 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 वो हमारी हैबिट बन जाती है, क्योंकि हम कानून के तहत कर रहे हैं, और फिर वही हैबिट हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, और फिर वही काम हम समाज के अंदर जब सदस्य के रूप में जाते हैं तो कर रहे होते हैं। जैसे प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, मेरा फोन कोई टच नहीं कर सकता मेरे पास, क्योंकि मेरे फोन में आंकड़े हैं और ये मेरा अधिकार है, सरकार ने मुझे ये अधिकार दिया है। मेरा लैपटॉप कोई नहीं देख सकता क्योंकि लैपटॉप पर मेरे अपने आंकड़े हैं, मेरी अपनी चीजें हैं, ये मेरी निजता है, उसे आप टच नहीं कर सकते। तो मेरी आदत बनती चली जा रही है, मैं जिस कमरे में लैपटॉप पर अपना काम कर रहा हूं आप नहीं आ सकते जब बिना ठकठकाए हुए, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप को खोले हुए हूं, मेरी निजता है। तो धीरे धीरे करके जो निजता है ये मेरी चेतना का एक हिस्सा बन जाती है। फिर मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे जीवन में थोड़ा भी दखल दे, चाहे फिर वह मेरे पारिवारिक संबंधी मामले ही क्यों ना हो। मान लीजिए कि एक पति पत्नी है और उनमें किसी बात को लेकर के झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, बहुत बुरी स्थिति है, लोगों को लगता है कि इसे सुलझाया जा सकता है या कम से कम कोशिश तो की ही जा सकती है, लेकिन पति पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे कि ये हमारा निजी मामला है। आप हमारे माता पिता हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप हमारे सास ससुर हैं, आपको भी हम प्रणाम करते हैं, लेकिन प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, डोंट इंटरफेयर इन दिस मैटर, यह हमारा निजी मामला है। तो जब इस तरह की चीजें धीरे धीरे विकसित होती चली जाएंगी तो डेफिनेटली इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं सामुदायिक जीवन पर पड़ेगा, और खासकर भारत जैसे सामुदायिक जीवन पर तो ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो जीवन है मूलतः एक कम्युनिटी का जीवन है। हमारे यहाँ जो परिवार का स्वरूप है, भले ही आज हम क्यों नहीं आप यूं कह लीजिए कि न्यूक्लियस फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जो संयुक्त परिवार के तत्व हैं वो हमारी चेतना में मौजूद हैं। हमारा जब परिवार छूटता है तो हम उस परिवार को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, महसूस करते हैं कि नहीं, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है मुझे लगता है कि जिस पर आप सबको अपनी ओर से अलग से विचार करना चाहिए। अगर कभी समय मिला तो इस विषय पर हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। भारत सरकार भी लगातार कोशिश में है कि जो हमारे निजता के अधिकार संबंधी कानून है उनको और दुरुस्त किया जाए। आप ये मत समझिएगा कि भारत में इसको लेकर के कोई कानून नहीं है, बकायदे हमारे यहाँ जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में जो लागू किया गया है उसके अनुच्छेद 43A के अंतर्गत बकायदे निजता के जो अधिकार हैं उनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें अभी बहुत और डिटेल व्यवस्था की जानी है और भारत सरकार इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोच रही है और उम्मीद की जा रही है कि अभी बजट सत्र में जब संसद का फिर से अधिवेशन शुरू होगा तो उसमें बैठकें शुरू होंगी, तो उसमें हो सकता है कि इसको लेकर के कानून लाया भी जाए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट जो हमारे एडमिशन लेने वाले हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं प्रीतु ठाकुर, विपिन कुमार, शिवानी शर्मा, अंजलि सोनी, मोहम्मद बिलाल आरिफ, श्रुति गौतम और हेमराज वर्मा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।